ॐ वेदामहेतं पुरुषं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेविदित्वाति मृत्युं नेति नान्यपन्था विद्यते अनाये वेदा अहम् एतं पुरुषं महंतं हम या मैं उस भगवान को जाने जो सबसे महान है आदित्य वर्णम तमसा परस्तात सारे संसार और विश्व के अंदर सूर्य के समान प्रकाशमान हुआ हुआ है अंधकार से परे है तमे विदित्वाति उसको जानकर ही तमे विदित्वाति मृत्यु नेति उसको जानकर ही हम मृत्यु पर मौत पर विजय पा सकते हैं नान्य पंथा विद्यते अनाये अब इंटरप्रेटर तो यहाँ है नहीं
यन्मे छिद्रम चक्षुषो हृदयस्य मनसो वापि तृणम बृहस्पति मे तद्दधातुः इस मंत्र में कहा है यन्मे छिद्रम चक्षुषो हृदयस्य मनसो मेरे नेत्रों में जो विकार है किसी भी प्रकार का और हृदय में और मन के अंदर और हृदय के अंदर दो कहा मस्तिष्क में और हृदय में और नेत्रों में तीनों में जो भी विकार हैं उनको आप निवारण करें आत्मित्रणम बृहस्पति नेत्र और मुझे इनके छिद्रों को दोषों को दूर कर करके वो परम धाम जो मोक्ष है उसको प्रदान कर ऐसी परमात्मा से प्रार्थना की गई है
24 जून 1978 ब्रह्म महेश्वरम ओम देवतानाम ब्रह्म च देवतम मोक्ष की प्राप्ति के लिए चार साधन बतलाए हैं उनमें अंतिम जो दो साधन हैं प्रधान रूप से ज्ञान और वैराग्य इनकी अधिक विशेषता है अंत में सन्यासी वानप्रस्थी इनका ही आश्रय करते हैं दो आश्रम यदि ब्रह्मचारी और गृहस्थी भी मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं तो ज्ञान और वैराग का अवलंबन करना होगा बिना ज्ञान और वैराग के प्राप्ति नहीं हो सकती है धर्म और अर्थ जो हैं वो ज्ञान वैराग के पोषक बनते हैं परंतु धर्म अर्थ का थोड़ा संबंध वानप्रस्थियों में और सन्यासियों में भी रहता है क्योंकि ये लोग भी धर्म का पालन करते हैं और कुछ न कुछ शरीर के लिए पदार्थों का उपभोग भी करते हैं तो इसलिए सामान्य रूप से इनके साथ भी धर्म और अर्थ रहता है तो इनको भी धर्मों का पालन करना पड़ता है अब जैसे धर्म यम नियम आदि बतलाए थे तो इन तत्व ज्ञानियों को भी एक प्रकार से यम नियम का पालन करना पड़ता है जब तक ये रहना है तब तक यम नियम का पालन करना आवश्यक है क्योंकि ये एक प्रकार से जैसे मकान की बुनियाद और आधारशिला होती है अगर वह निकल जाएगा तो मकान भी गिर जाएगा तो इसलिए यम नियम आदि जो धर्म बतलाए हैं ये आधारशिला है तत्व ज्ञान की, वैराग की, मोक्ष की, बिना इनके प्राप्ति नहीं हो सकेगी। वो भी बंद है, बंद है, बंद किसका? जैसे ये हमारा शरीर है, ये ही हमारे बंधन का हेतु बना हुआ है, इसने ही हमको बांधा हुआ है, सारा दिन इसी की सेवा पूजा में लगे रहते हैं। अब अभ्यास के आपके मेरे ख्याल में 3-1 घंटे होते हैं हमारे सामने बैठने के, तो इन 3 घंटे के अलावा और सारा समय इस शरीर की पूजा में ही जाता है। सोना इसके लिए, कर्म व्यवहार करना इसके लिए, खाना पीना आदि सब इसके लिए, और इधर के जितने लोग व्यवहार हैं सब शरीर के लिए। तो सिवाय इन 3 घंटे के और 21 घंटे जो हैं वो सारे शरीर की पूजा में लगते हैं। असली देवता तो ये है, भगवान तो ऐसे ही फालतू का है। इसके लिए 3 घंटे आराधना करते हो वो फालतू है, असली देवता ये शरीर है। अब यही इसलिए, और ये भी पता आपको, लोगों को मरते हुए देखते हो, इसने भी मरना है। इसी का नाम अविद्या है, इसी का नाम अज्ञान है, जो इसको हम अजर और अमर बनाने की 21 घंटे चेष्टा करते रहते हैं। तो जब तक इस प्रकार का बंध ये दूर नहीं होगा, इसके प्रति पूरी प्रकार की भावना नहीं होगी कि ये नाशवान है, इसमें विनाश होना है, 10, 20, 50, 100 साल में इसमें चले जाना है, तो इसमें इतनी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। 3 घंटे की तो आसक्ति आपकी भगवान की या आत्मा की बनती है, और 21 घंटे की आसक्ति इसकी है। तो 21 घंटे बन, अब 3 घंटे की मुक्ति क्या करेगी वो, थोड़ी सी 21 घंटे में, तो बहुत थोड़ी है। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा समय आत्म चिंतन और ब्रह्म चिंतन में लगाना चाहिए, ताकि कम से कम आधा समय तो लगाए। 24 घंटे में 12 घंटे तो आत्म चिंतन ब्रह्म चिंतन के लिए लगाया जाए, तब तो आपका ज्ञान और वैराग मालूम होगा, सिद्ध होगा, प्रतीत होगा। नहीं तो बस ये जड़ चीज, नाशवान चीज की उपासना भक्ति में सारा दिन लगे रहते हैं, इसीलिए मोक्ष की संभावना ऐसी स्थिति में नहीं हो सकती है, और तत्व ज्ञान की भी संभावना नहीं हो सकती है, क्योंकि ज्ञान और वैराग का संबंध रहता है। ज्ञानी कोई वैराग हो सकता है, मूर्ख को नहीं हो सकता, इसलिए ज्ञान की भी आवश्यकता है। तो ज्ञान इस शरीर का अध्ययन करें कि देखो इससे मल मूत्र निकलते हैं, जब इससे बाहर निकल जाते हैं तो उनसे हमें नफरत होने लगती है। वही तो चीज है जो 1 मिनट पहले इस शरीर में रखी थी, उससे नफरत नहीं, तो इसी का तो वो विकार है, इसी का तो परिणाम है। तो इससे जैसे बाहर के टट्टी और पेशाब से उपेक्षा होती है, इस शरीर से भी ऐसी उपेक्षा करनी पड़ेगी। तो कम से कम आधा समय तो होया ये इस शरीर के लिए, और आधा समय आत्म चिंतन और ब्रह्म चिंतन के लिए, तब कुछ बात बन सकेगी। और नहीं तो पता नहीं कि इस जन्म में भी कुछ ना बने, और ये बहुत से भाई तो अगले जन्म की बात मानते ही नहीं, तो फिर ऐसे ही जाना पड़ेगा इस दुनिया से, जैसे आए थे वैसे ही चले गए। तो 3 घंटे की भक्ति उपासना से क्या बनेगा, इसलिए समय इसका ज्यादा बढ़ाना चाहिए। हमने तो बल्कि और रखे थे, 3 घंटे एक रखे थे और 2 घंटे एक, 5 और 3 8 घंटे रखे थे तीसरा हिस्सा। अब तीसरे हिस्से में भी वो जो 2 हिस्से रखे, 1 3 घंटे का दोपहर के बाद का 3 से 5 का, और 1 रखा है 10 से 12 तक का, तो इन दोनों में भी भागने की कोशिश करते, मोटे काम मांगते। तो आप उसी के अनुकूल आज भी कर्म कर रहे हो। कर्मों का सिलसिला चलता है, आगे आगे बढ़ता रहता है, बंद नहीं होता। अगर पुनर्जन्म नाम की कोई बात ना होती और इस शरीर में से कोई निकल करके आगे जाने वाला कोई सूक्ष्म शरीर ना होता तो शायद मोक्ष भी नहीं मिलने की बात होगी, क्योंकि इस शरीर को तो मोक्ष मिलता नहीं, ये तो यही मरण हो जाता है। तो मोक्ष प्राप्त करने वाली कोई और चीज है, तो वो जो चीज है वो तो कल परसों तरसों साल छह महीने से एक जैसे कर्म ही तुम्हारे चलते हुए आ रहे हैं। आज यहाँ कितनी तारीख है, 23 24 तारीख है, तो 24 दिन में आपके एक जैसे कर्म मिलते जुलते चल रहे हैं, कोई इनमें अंतर विशेषता नहीं आई। परसों तरसों उसी तरह मेडिटेशन, खाना पीना आदि ऐसे कर्म चलते रहे। जब ये तुम्हारे बंद नहीं हो रहे हैं रात्रि को सोने पर, तो इस शरीर के मरने पर भी क्यों बंद होंगे? क्योंकि ये शरीर तो रात को भी नींद की अवस्था में मर जाता है, इसके तो कर्म है नहीं। कर्म तो वो दूसरे शरीर के, सूक्ष्म शरीर के ही है, मन बुद्धि के या आत्मा के ही हैं, तो वो तो जागरूक रहते हैं, उनके कर्म तो बंद नहीं होते। फिर वैसे ही जो विचार रात को लेकर सोए थे उन्हीं को लेकर उठकर फिर वैसे कर्म करने लगते हो। तो जब ये सिलसिला बंद नहीं हुआ इस स्थूल शरीर को धारण कर करके, तो इसके अभाव में भी कर्मों का सिलसिला कैसे बंद हो सकता है? वो तो चलना ही चाहिए। तो इसलिए फिर कोई ऐसा और चोला इस सूक्ष्म शरीर को धारण करना पड़ेगा, शरीर रूपी चोला, ताकि वो जो हम मोक्ष प्राप्त करना चाह रहे हैं उसके लिए हम कर्म करने में समर्थ हो सके आगे। इस जीवन में भी मोक्ष के समान सुख हो सकता है। जैसे ध्यान अभ्यास आदि के समय में तुम्हें शांति और आनंद की उपलब्धि होती रहती है, अगर इस वित्थान अवस्था में भी तुम्हारा मन शांत बना रहे और आनंद की धाराएं सी तुम्हारे अंतःकरण में चलती रहें, तो ये भी ध्यान अभ्यास समाधि के समान ही तुम्हारा वित्थान का समय, जागृत का समय हो जाएगा। तो या शांति और आनंद इस जागृत अवस्था में बनाए रखना चाहिए, जिन उपायों से, जिन साधनों से निरंतर शांति और आनंद बना रहे वैसे कर्म करते रहना चाहिए। और ये शांति और आनंद अगर मरण पर्यंत इस शरीर के बना रहेगा तो बस बाद में भी पूरा पक्का विश्वास कर लो कि आगे जब ये मन जाएगा, चाहे तो ये सूक्ष्म जगत में रहे, चाहे कारण जगत में रहे, चाहे मोक्ष में जाकर बैठ जाए, वहां भी इसके शांति और आनंद बराबर बने रहेंगे। उसका नाम होगा मोक्ष।